ஹரிஹந்தானம் ணமோ சித்தானம் நமோ ஆயிரியாணம் ணமோ வச்சாயாணம் ணமோ லோயே சவசாபுணம் வந்து சுசவசித்தி பூமச்சல மனோவம் கதிம் பச்சே ஓச்சாமி சமய பாகுள் புது கேவலி வணிகம் துருவச்சல அனுபம் சித்தி கருவந்து நாமே ஸ்வபரஹிது யஹ சமய ப்ராப்ரத் கஹ ரஹா ஸ்ருத கேவலி த்வாரா கதித். ग्रंथाधिराज समय सार भी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह अनुपम कृति जिसे उनके माध्यम से अंतर की गहराई में बैठ करके लिखा गया, लेखन कुंद कुंदाचार्य का है, लेकिन वे कहते हैं कि स्वयं हुआ है यह कार्य, इस कार्य के होने में मेरा कर्तृत्व नहीं है। जो आचार्य कुंद कुंड के बारे में कुछ सुनने के भाव व्यक्त किए हैं, कुंद कुंदाचार्य जैन संस्कृति के वे महान आचार्य हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद सीधा कुंद कुंदाचार्य को याद किया जाता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वही मंगलम कुंद कुंदा। आप कल्पना कीजिए, इनके पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं, इनके बाद में भी बहुत हुए हैं, फिर भी आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कुंद कुंदाचार्य को डायरेक्ट गौतम स्वामी के बाद में याद किया और किसी को याद नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां। सच में इन्होंने जो काम किया है वो तीर्थंकरों जैसा कार्य है। आज इस पंचम काल में यदि ये समय सार ग्रंथ ना होता तो तीर्थंकरों का विरह निश्चित रूप से हमारे को कष्टप्रद होता, लेकिन आज यह पंचम काल चल रहा है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, केवलियों की वाणी नहीं है, फिर भी ये समय सार हमारे पास में उपलब्ध है, तो मानो हमें वो याद नहीं आता कि नहीं है तो कोई बात नहीं। आखिर तीर्थंकर परमात्मा होते तो वे भी यही तो बात बतलाते। पूरी दिगंबर परंपरा 2000 वर्षों में हुए जितने आचार्य मुनि संघ सब वो अपने आप को दिगंबर आमनाय का होने के बावजूद भी कुंद कुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में वो गौरव का अनुभव करते हैं। हम आचार्य कुंद कुंद की परंपरा के हैं। आज भी जैन मंदिरों में जितनी प्रतिमाएं मिलती है उन सभी प्रतिमाओं पर, दिगंबर प्रतिमाओं पर कुंद कुंदाचार्य का नाम मिलता है। प्रतिमा की जो नीचे प्रशस्ति लिखी जाती है उस प्रशस्ति में लिखा जाता है कुंद कुंद आमनाए, कुंद कुंदाचार्य की आमनाए। ये वे महान समर्थ आचार्य हैं जिन्हें देह सहित विदेह क्षेत्र जाने का गौरव प्राप्त था। साक्षात महाविदेह क्षेत्र जाकर के आए, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए, 8 दिन वहाँ रहे। कैसी अपूर्व बात है, कैसी गजब की बात है ये। माने तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन करके आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य थी, रिद्धि थी इनके पास में, इस प्रकार की गई। एक प्रमाण ऐसा भी मिलता। हाँ, भरत से विदेह क्षेत्र गए ना, कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी भरत क्षेत्र से ही विदेह क्षेत्र गए थे, यहीं के आचार्य थे, पंचम काल में ही गए हैं। साधारण से वहाँ जाना समर्थ नहीं है, लेकिन रिद्धि के प्रभाव से। ऐसा भी सुना जाता है कि कोई पूर्व भव का देव वो इन्हें अपने साथ में ले गया था। खैर जो भी रहा हो, लेकिन साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन के आकर इन्होंने जो ये रचनाएं की ये बहुत अपूर्व है, सुनी सुनाई बातें नहीं लिखी, सुनी सुनाई बातें नहीं लिखी इन्होंने, इन्होंने सब अनुभव की बातें लिखी। इसलिए इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ ये आगम नहीं कहलाए, ये परम आगम कहलाए। क्या फर्क है आगम और परमागम में? आगम ये परमागम है, समय कार परमागम है। इनकी रचनाओं को पंच परमागम के नाम से कहा जाता है, परमागम क्यों? सुनिए, आगम उसे कहते हैं जो परंपरा से चली आई हुई बात है। आप्त वचनम आगम है, आप्त माने सर्वज्ञ, आप्त माने अरहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, उनकी वाणी को आगम कहते हैं। आप्त वचनम आगम है, ये व्याख्या है शास्त्रों में। दूसरी बात, जब आगम शब्द को गहराई से देखते हैं तो इसमें तीन अक्षर है, आ ग और मा। आ ग मा, आ माने आप्त, वो है अरहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा, आप्त के द्वारा कहा गया। आ ग माने गणधर्म, गणधर्म के द्वारा गूंथा गया। और मा माने है मुनि, मुनियों के द्वारा लिखा गया। तो जो तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया हो, गणधर्मों के द्वारा गूंथा हो और मुनिराजों द्वारा लिखा गया हो, उसका नाम है आगम, परंपरा से चलाया। जो बातें कही जाए, जो बातें सुन सुन करके चली आई हो, तो वो है आगम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने आगम नहीं परमागम लिखा, क्योंकि इसमें सुनी हुई बातों की प्रमुखता नहीं है समय कार में, इसमें अनुभव की प्रमुखता है। जो बात लिखी है वो अनुभव से लिखी है। हो सकता है प्रवचन कार ग्रंथ में सुनने की मुख्यता हो सकता है पंचाक्षी काय आगम ग्रंथ हो, आगम की व्याख्याएं हो उसमें, लेकिन नियम सार तृणीय भावना निमित्तम, अंतिम गाथा में लिखते हैं नियम भावना निमित्तम, अपने आप के लिए लिखा है नियम सार। यह समय सार मानो अंदर की गहराई में डूब कर लिखा गया हो। अष्टपाहुड़ में तो उनके दर्शन प्रशासनिक के रूप में होते हैं। मैं इस ग्रंथ को परमागम कहता हूँ, मैं इसके परमागम पढ़े की व्याख्या करता हूँ। या फिर परमागम क्यों है, इसे परमागम क्यों कहा गया? इसे परमागम कहने के पीछे सबसे बड़ा हेतु यह है कि इसमें जितने अध्यायों में चर्चा की है, सब में यह झलकता है कि ये बात अनुभव की बात है। देखो आप, जीवा जीवाधिकार पहला, दूसरा कर्ता कर्म अधिकार, फिर आश्रव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार। इन अधिकारों को जब उठा करके देखो, पुण्य पाप, फिर आश्रव, फिर उसके बाद में आश्रव अधिकार के बाद संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार। इन अधिकारों को देखो, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, क्या लगता है आपको? आश्रव और बंध की चर्चा की हुई है तो? पूरा आश्रव अधिकार लीजिए अंकुल भाई, और पूरे आश्रव अधिकार में आश्रम के भेद प्रभेद नहीं गिनाए, कर्म प्रकृतियों के नाम नहीं बतलाए बंध अधिकार में, तो फिर क्या बंध के बारे में व्याख्या की? हमें तो यही लगता है, हमें यदि आश्रम के बारे में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? आश्रम के पांच भेद हैं, इतने कर्म प्रकृतियां हैं, इतने इतने कर्मों का आश्रम होता है, ये तो सब लिखेंगे ना। संवर अधिकार में उन्होंने ये चर्चाएं नहीं की कि कितनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छेद कैसे होती है, माने ये कर्म की चर्चा अनुभव में नहीं आती, ये तो सुन करके ही आएगी। अनुभव में ये बात नहीं आ सकती कि कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, ये तो केवल ज्ञान में आई हुई बात है। तो जहाँ कर्म प्रकृतियों का, गुणस्थान का, मार्गण स्थान का, ऐसे प्रकरणों की चर्चा हो जो केवलियों से सुन करके आए, उसका नाम तो है आगम। और इन्होंने बंध अधिकार और आश्रव अधिकार जैसे अधिकारों में भी कर्म प्रकृतियों की चर्चा नहीं करके ये लिखा कि ज्ञानी आश्रव के काल में भी निराश्रव है। ये बात कहाँ से आई? बंध अधिकार ने कर्म प्रकृतियों के बंध आदि की चर्चा नहीं करी, अभी तो ये कहा कि बंध से मुक्ति कैसे होती है, ज्ञानी को बंध क्यों नहीं होता। निर्जरा अधिकार में कर्मों की निर्जरा की चर्चा नहीं की, उन्होंने निर्जरा अधिकार में कहा ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये बातें कहाँ से आ सकती सोचे जरा गया है। ये बातें ऐसी नहीं हो सकती है जो बातें किसी ने कह दी और मान ली गई हो। आगम में सारे आगम उठा करके देख लो, जितने आगम हैं सब में सुन सुन करके परंपरा से चली आई हुई बात मिलेगी। षट खंड आगम है, षट खंड आगम गोमट पारादी आगम है और समय सार परम आगम है। एक प्रवचन है मेरा पूरा समय सार की विषय वस्तुओं के ऊपर, एक पूरा सिंगल प्रवचन जिसमें पूरे ग्रंथ आदि रात समय सार का परिचय कराया है। पौन घंटे एक घंटे का प्रवचन है, एक एक अधिकारों की चर्चा है, उनका मर्म बतलाया है कि इस अधिकार की विषय वस्तु क्या है, इसमें बात क्या कही गई है। तो रेजूमा मैं मिलेगा आपको मैंने ये समय सार में आखिर क्या कहा है। एक एक ग्रंथ के लिए हमारे को देखना हो पौन घंटे एक घंटे में तो पूरा का पूरा हमारे को पता लग जाएगा आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। कर्ता कर्म अधिकार लिखा इन्होंने, पूरे सृष्टि में ये प्रसिद्ध है बात कि ज्ञानी लोग अकर्ता हैं। ये बात प्रसिद्ध है कि ज्ञानियों के भगवान कुछ कर्ता धर्ता नहीं है। सबसे बड़ा अधिकार लिखा है कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार में आधी लाइन भी नहीं दी कि भगवान कर्ता नहीं है। 76 गाथाएं हैं, 76 इस कर्ता कर्म अधिकार में 76 गाथाएं और मतलब 152 लाइनें, 152 लाइनों में से दो लाइन एक लाइन आधी लाइन में भी उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार में ये नहीं कहा कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। वो इतना भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे अपना शब्द ये बात कह करके, क्या दम है इसने भगवान कर्ता धर्ता नहीं है ये क्या बात कहें। असली बात तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान कर्ता धर्ता नहीं है इसमें क्या दम है। लेकिन ये जो छोटे छोटे से भगवान बने ना घर घर में, मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैंने किया, इन भगवानों की मान्यता तोड़ानी थी। भगवान करता है कि नहीं करता है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है उस विचार से, लेकिन मैं करता हूँ ये मान्यता में छात्र है, परका करता हूँ ये मान्यता में छात्र है, ये अनंत संसार का कारण है। इस मान्यता को तोड़ा उन्होंने पूरे कर्ता कर्म अधिकार, स्वतंत्रता की बात की, स्वाधीनता की बात की है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, क्या गजब बातें निकल करके सामने आई है। ये ग्रंथाजी रात समय सार चलता है यहाँ, ये समय सार, ये समय सार में पांचवी गाथा में ही उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं उस जीव तत्व को बतलाऊंगा, उस आत्मा को बतलाऊंगा जिस आत्मा की चर्चा तुमने कभी सुनी नहीं है, उस शुद्ध आत्मा की चर्चा करूंगा जो शुद्ध आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, उस शुद्ध आत्मा की चर्चा करूंगा। और प्रतिज्ञा की इधर, और छठी गाथा में तो मानो फर्स्ट बॉल से सिक्स मार दिया। पांचवी गाथा तक तो मंगलाचरण है, प्रतिज्ञा वाक्य है, वहां तक तो कुछ कही नहीं है बात। समय साहब तो छठी गाथा से ही शुरू हुआ है, पहली गाथा मंगलाचरण किया, दूसरी गाथा के अंदर स्व समय पर समय बताया, तीसरी गाथा में समय की अलग प्रकार से व्याख्या करके समय सार बताया, ग्रंथ के नामकरण की चर्चा हुई, चौथी गाथा में ये बतलाया कि तुमने आज तक क्या सुना है और क्या नहीं सुना है। हमने सुनाया थोड़ी ने क्या सुना और क्या नहीं सुना, काम भोग बंधन की कथा अनादि काल से अनेक बार सुनी है, जीव की चर्चा नहीं सुनी, शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा। और पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा जी की ये सुनाऊंगा। अब छठी गाथा से शुरू करते हैं समय सार, और छठी गाथा नंबर 6 और मानो 6 लगा दिया है। यहाँ वर्ल्ड कप चल रहे हैं ना, पहली भी बॉल पर पहली गाथा में और क्या कह दिया ये सुन, कोई बात क्या कह दिया गया पहली गाथा में सोचो आज जरा। फर्स्ट गाथा में ही चर्चा कर ली उन्होंने छठी गाथा में कि सुन तू बंधन से मुक्ति चाहता है ना, तो इस बात का विचार कर कि बंधाई नहीं है। तुझमें गुणस्थान नहीं है, तुझमें मार्गणा स्थान नहीं है, तुझमें हीन समास नहीं है, तुझमें विकार नहीं है, तुझमें अशुद्धता नहीं है, तुझमें मलिनता नहीं है, तुझमें कषाय नहीं है, तुझमें राग द्वेष नहीं है, तुझमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तू निर्विकारी परम शुद्ध ऐसा तत्व है, अंदर में देह देवालय में विराजमान ऐसा ज्ञायक प्रभु परमात्मा है। विचार तो कर एक बार उसके बारे में, विचार नहीं करता है। विचार करने के लिए कह दिया, विचार कर भैया, विचार कर, हूँ कौन मैं, समय ज्ञायक शिव, समय परमात्मा शिव, परमात्मा होगा बात कर रहे हैं। छठी गाथा, ज्ञायक को ज्ञायक बताने वाली गाथा पिछले तीन चार दिन से चल रही है। हम इस गाथा के का पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके टीका में क्या कहा है कुंदकुंदाचार्य देव ने, अमरचंद्राचार्य देव ने, देखिए। नवी हो दिया पमस्तो नपमस्तो जान गो दुजो भावो एवं मणंति शुद्धम नादो जो सो दुसो शिव न प्रमात है न प्रमात है बस एक जायक भाव है इस भांति कहते शुद्ध पर जो जाते रह तो वही है जो ज्ञात है वह तो वही है जो है तो है। किताब जी जो ज्ञायक आपने कहा है यहाँ इस ज्ञायक के बारे में कुछ तो बताओ क्या कुछ तो कहो। तो कहा भाई ये ज्ञायक भाव अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है। अभी अमृत चंद्राचार्य खोलेंगे इस बात को अप्रमत्त और प्रमत्त क्यों नहीं है, किस वजह से शुद्ध है, इसकी शुद्धता का हेतु क्या है, वो चर्चा यहाँ टीका में करने वाले हैं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, कहना व्यवहार है ना। अपने पांडे राजमल जी खरच टीकाकार वो कहते कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है, जो कुछ बोला गया वो सब व्यवहार है। निश्चय क्या है कि जो है सो है, निश्चय अनिर्वचनीय है। पांडे राजमल जी समयकार कलश टीका में लिखते हैं निश्चय अनिर्वचनीय है, निश्चय कहा नहीं जा सकता, जो कहता है वो व्यवहार है। आप कहो आत्मा के बारे में कुछ भी, जो कहोगे व्यवहार होगा, जो कहोगे वो सत्य स्वरूप नहीं होगा, ये स्वरूप सत्य नहीं है, कथन मात्र है। किताब अनंत गुण है ये भी व्यवहार है कि हाँ, क्योंकि ये जो गुण कहा गया है महेंद्र भाई ये भाव पक्ष की अपेक्षा से कहा है, द्रव्य क्षेत्र काल पक्ष से क्या होगा, द्रव्य पक्ष से वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, क्षेत्र पक्ष से वस्तु असंख्यात प्रदेशी है, वस्तु माने आत्मा, काल की अपेक्षा से भगवान आत्मा अनादि अनंत है नित्य है, और भाव की अपेक्षा से अनंत गुण शक्तियों धर्म वाला है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से देखो तो आपने अनंत गुण वाला कह दिया तो भी अधूरी बात है, असंख्यात प्रदेशी कह दिया वो भी अधूरी बात है, त्रिकाली कह दिया वो भी अधूरी बात है, हमें शब्दों में पकड़ में आ सके ऐसा ये भगवान आत्मा नहीं है। देखिए टीका, हम दो तीन वाक्यों की चर्चा कर चुके हैं पहले, जो अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कल हमने सत्ता की भी व्याख्या की आपके बीच में, सत्ता 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 चलती है इसकी अनादि काल से, और सत्व है, और सत्ता उसे कहते हैं उत्पाद है द्रव्य युक्तम, इसका नाम सत्य है ना, इसकी चर्चा तो अलग से एक प्रवचन में कर चुके आपके बीच में, उत्पाद है द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, आत्मा की सत्ता है, इसका मतलब आत्मा सत्य है और सत्य है वो उत्पाद जैसे सहित है, और उत्पाद जैसे सहित होने के बावजूद भी ध्रुव है, और ध्रुव का मतलब विनाश नहीं होता, इसका मतलब कभी मरता नहीं है, ये तो अनादि सत्ता स्वरूप के दिया, और कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है, उत्पन्न नहीं होता और विनाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनादि अनंत है। अब देखिए आगे, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, सदा प्रकाशमान है, सूर्य की तरह अस्त नहीं होता, ये उद्योत रूप है और नित्य है। आत्मा कब नहीं है बताओ? आत्मा कभी सोता तो होगा?
नहीं,
कभी निद्रा में? आत्मा कभी थकता तो होगा? आत्मा प्रकट प्रकाशमान है, तो क्या अंधकार में भी प्रकाश करता है? कि रात्रि के घने अंधकार में भी गए स्वभाव को देखो तो प्रकाशमान दिखाई देगा अंदर। पुद्गल का प्रकाश नहीं, क्योंकि प्रकाश पुद्गल की पर्याय है, ये तो ज्ञान प्रकाश की बात है, ये तो चेतना के प्रकाश की बात है, ये तो चैतन्य स्वरूप की बात है। नित्य उद्योत रूप होने से, नित्य उद्योत रूप है, नित्य प्रकट है, यह कैसा है? क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट है, प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है। अब इस ज्ञायक भाव को समझा रहे, ये कैसा है ज्ञायक भाव? जो अनादि अनंत है, जो नित्य उद्योत रूप है, जो सदा प्रकट प्रकाशमान है, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है, आखिर वो है कैसा? वो ज्ञायक भाव, जो इस ज्ञायक भाव है वह कैसा है? तो सुनना, जो आपने अनादि अनंत क्यों कह दिया, आपने इसे शुद्ध क्यों कह दिया, आपने इसे नित्य उद्योत रूप क्यों कह दिया, ये दृष्टि की बात है। ये तो देखो, दो दृष्टि से बात करते हैं हम। मैं संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, ये वाक्य क्यों दिया अमरचंद्राचार्य ने? यदि ये वाक्य नहीं देते ना तो शायद ये समझ लिया जाता कि ये सांख्य वेदांतियों की बात है। शुद्ध मानते हैं वो भी आत्मा को, हम शुद्ध कह रहे हैं, लेकिन हम जो शुद्ध कह रहे हैं वो सापेक्ष कथन है, वो मुख्यता गौणता से किया गया कथन है, वो स्यादवात गर्भित वचन है। और वो लोग जो कहते हैं वो एकांत से कहते हैं, यहाँ कहते हैं अनेकांत से, तो कहते हैं ये होने पर भी। जब हमने कल शुद्धता की इतनी चर्चा की तो कोई व्यक्ति ये बात तो कह ही सकता है ना कि पंडित जी शुद्धता शुद्धता की आप इतनी बातें कर रहे हो, आत्मा को शुद्ध ही माने, अशुद्धता नहीं है ना? अशुद्धता भी तो है, ये भी तो कहो। तो आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं ऐसा होने पर भी, अशुद्ध होने पर भी। क्या शुद्ध कैसे है? तो पर्याय अपेक्षा से, वाक्य बहुत मार्मिक वाक्य है। ज्ञायक भाव संसार अवस्था में, संसारी अवस्था की बात कर रहे हैं। मुक्त अवस्था में तो राग द्वेष के है ही नहीं, मुक्त अवस्था में तो शुद्ध ही है। वह ज्ञायक भाव संसार अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, संसार अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति, अनादि बंध पर्याय की तरफ से देखो आप, बंधा तो है ना अनादि काल से, तो क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप हो रहा है अनादि काल से। कर्म बने ना, इस परिस्थिति को बतला दिया। शाम को जो चर्चा चलती है ना अपनी, उसको इन्होंने एकांत रूप से एक पक्ष से स्वीकार किया, ऐसा है। वो कहते हैं क्षीर नीर की भांति कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा और कर्मों का संबंध
अपनी भ्रांति से है,
भ्रांति से है, ठीक बात है। लेकिन वो कर्म का बंध ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल काल्पनिक हो, वो है, वो फैक्ट है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आत्मा और ज्ञान का जैसा संबंध है वैसा संबंध कर्म का नहीं है। आत्मा और ज्ञान का तो नित्य तादाद में संबंध है, ये कर्म के साथ में तादाद में संबंध नहीं है। तो ऐसा संबंध भी नहीं है जैसा संबंध बाहरी पदार्थों का होता है, ऐसा भी नहीं है। डब्बे में यदि मिठाई रखी गई तो मिठाई और डब्बे का जैसा संबंध है वैसा संबंध भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। आत्मा और कर्म का संबंध ऐसा भी नहीं है कि चावलों में कंकड़ मिले हुए हो, गेहूं में कंकड़ मिले हुए हो, अब उसको आप देखो आपको लगता है पूरे मिले हुए हैं एक दूसरे में, वो कहाँ मिले हुए हैं, उसमें तो गेहूं का क्षेत्र अलग है और कंकड़ का अलग है, कहाँ मिले हुए हैं। चावल का क्षेत्र अलग है और कंकड़ का क्षेत्र अलग है, सब अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ मिले हुए हैं, वो मिले हुए नहीं है। लेकिन दूध और पानी बोलो है तो अलग अलग, ध्यान देना, दूध अलग है पानी अलग है, लेकिन मिले हुए होने पर ऐसा आभास होता है कि ये एक ही है, ऐसा फील होगा। तो दूध और पानी जिस तरह से दो होते हुए भी एक दिखते हैं, उसी तरह से कर्म और आत्मा भी दो न्यारे न्यारे होते हुए एक दिखते हैं। कब? अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, पर्याय अपेक्षा से देखने पर, संसार पर्याय की अपेक्षा से देखने पर अशुद्ध दिखता है, विकारी दिखता है, खीर नीर की तरह दिखाई देता है। ऐसा होने पर भी, इतने घुले मिले होने पर भी, आत्मा और कर्मों का ऐसा संबंध दिखाई देने पर भी, दूध पानी की तरह घनिष्ठ संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, एक क्षेत्रावगाह समझिए, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी, अब बोलो अब क्या करें। सीधा भी तो एक क्षेत्रावगाह है, साफ साफ तो दिख रहा है, आत्मा की जितने असंख्यात प्रदेश है, प्रदेश प्रदेश पर अनंत कारमाण परमाणु बनी हुई है, अनंत अनंत कारमाण पुद्गल परमाणु वो उसी प्रदेशों पर है जिन प्रदेशों पर आत्मा है, क्या करें बोलो, तो है ना, स्वीकार करो ना उसको। लेकिन क्या करें, सुनो ये बंद की चर्चा तो अनंत बार सुनी है, तू थोड़ा सा एंगल बदल करके देख, तू थोड़ा सा दृष्टि बदल करके देख, कुछ और दिखाई देगा कि कैसे बदलूं। ये बदली इन्होंने द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, पहले कैसे देखा था, पर्याय की अपेक्षा से, संसार अपेक्षा से देखा था, पर्याय अपेक्षा से देखा था, अब क्या कह रहे हैं, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, स्वभाव के नजदीक आकर के देखा जाए, स्वभाव के निकट आकर के देखा जाए, तो क्या दिखेगा। अभी तो दूर से देख रहा है तो क्या दिख रहा है, और पास आकर के देखा तो क्या दिखा, जो दूर से देखा था वो भी झूठ नहीं था, पर्याय अपेक्षा से जब देखा तो आत्मा और कर्म एक में एक दिख रहे थे, हमें आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों में जो आकाश के प्रदेश पर है उसमें हम भेद नहीं कर सकते, वो भेद है ही नहीं, वहाँ एक ही आकाश के प्रदेश पर है, जिन आकाश के प्रदेशों पर आत्मा है उन्हीं आकाश के प्रदेशों पर कर्म परमाणु है, कोई फर्क नहीं, एक ही जगह पर दोनों रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात कही आगे, देखो क्या कह दिया, दो अपेक्षाओं से बात है, पुस्तक के सामने है नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वाक्य स्मरण में रहे फिर पूरा वाक्य, अब तो बात ख्याल में आए, नहीं तो बात बैठती नहीं है, तो आपके हाथ में हो ना पुस्तकें तो फिर मैं एक एक शब्द ऐसा दिखाऊं, ये देखो एक एक शब्द पर रुकूं मैं, फिर पूरा वाक्य सुनूं, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या कहा, वह संसार की अवस्था में कौन, वह ज्ञायक संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, क्या बंध पर्याय की निरूपणा से, पर्याय की अपेक्षा से खीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक रूप दिखाई दे रहा है, किस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से खीर नीर की तरह दिख रहा है। तो भी क्या कह रहे हैं, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दूरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक शुभ शुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ सिद्ध कहलाता है। बहुत सारी बातें कह दी, वाक्य थोड़ा सा लंबा हो गया। क्या कह दिया गया है यहाँ पे, कैसे देखो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो कैसा दिखेगा, बोलो। अरे भाई तुम अपने राग द्वेष को देखो, तुम अपनी कषायों को देखो एक बार। तो वो आचार्य देव कहते हैं हमें तुमने कषायें दिखाई नहीं देती, पर्याय से देखो तो कषायें दिखेगी और द्रव्य स्वभाव से देखो तो कषायें कहाँ दिखेगी, कषायें है कहाँ बताओ, राग द्वेष है कहाँ। अरे राम मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तू परेशान है तो एक बार द्रव्य स्वभाव से देख, तुझे परेशानी है कहाँ। जितनी परेशानी है वो सारी परेशानी पर्याय अपेक्षा से देखने पर है, द्रव्य दृष्टि से देखने पर समस्याएं दिखती ही नहीं है। जितनी समस्याएं दिखाई दे रही है, जितनी परेशानियां दिखाई दे रही है, सारी की सारी परेशानियां किस वजह से, पर्याय अपेक्षा दुखी हूँ पर्याय अपेक्षा से, संसारी हूँ पर्याय अपेक्षा से, मिथ्यात्मी हूँ संसार अपेक्षा से, अज्ञानी हूँ संसार अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से, ये तो पर्याय और ही भाव पर्याय अपेक्षा से, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव सब पर्याय अपेक्षा से देखा जा रहा है। मेरा धन है, मेरे ये संयोग है, ये सब है, ये सारी परिस्थितियाँ सब संयोग पर्याय अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो जितनी बातें कही है वो सब पर्याय अपेक्षा से कही गई है। तुम द्रव्य अपेक्षा से देखो, एक बार एंगल बदलो, एक बार नजरिया बदलो। सुनो नजर बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, निगाह ही तो बदलने की बात है और क्या है, निगाह बदल गई बस। एक घटना हमने ऐसी देखी और हमारी निगाह बदल गई, अब वो बात नहीं, पहले वाली बात नहीं। क्या हो गया ये तो बताओ, हुआ क्या। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पर्याय दृष्टि से देखना बंद कर दे रहे। ये सामने वाला व्यक्ति ये कहता है यार कैसी बात करते हो, पर्याय दृष्टि से कैसे नहीं देखेंगे, पर्याय है ना, है नहीं तो है तो दिखेगी कैसे नहीं, है तो दिखेगी ना, सीधी सी बातें इसमें क्या है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था दो तीन दिन पहले शाम को, मैंने कहा था कि आपने कौन सी टी शर्ट पहनी है, क्या ना कौन से कलर की पहनी थी कल, बताओ मतलब महेंद्र भाई मुकुल भाई ने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी कल, क्या हुआ पहनी थी ना, बताओ कल मैंने चश्मा लगा रखा था या नहीं, बताओ लगा रखा था नहीं लगा रखा था, ये दूसरा था। हाँ वीडियो देख लेना आपको दिख जाए, व्हाइट भी नहीं थी ब्राउन कलर की थी तो वो दूसरा था, ये दूसरा है। आपने मुझे देखा और चश्मा नहीं देखा, लगा रखा था कि नहीं, कल महेंद्र भाई बैठे थे चश्मा लगा के बैठे थे कि बिना चश्मे के बैठे थे, क्या पता कभी लगा लेते हैं कभी उतार लेते हैं। तो कल आपने बैठे हुए देखा क्या इनको, कि देखा तो था। और देखो कितनी गजब बात है, देखते हुए भी न देखे, होते हुए भी न दिखे महेंद्र भाई, ये कला सीखनी है हमारे को। ये छठी गाथा ये कला सिखाने की बात कर रही है कि राग होते हुए भी तुम्हें राग ना दिखे, किताब है तो क्यों नहीं दिखेगा, कि प्रयोजन भूत नहीं है ना, मत देख उसको, दृष्टि हटा, काम का नहीं है, इस तरफ ध्यान मत दे। अरे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है हमने, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले ऐसे लोगों को देखा है, पढ़ते समय यदि वो पढ़ रहे हो कोई आवाज भी लगाए तो पता नहीं लगता, आस पड़ोस में टीवी चल रहा हो तेज आवाज आ रही हो तो पता नहीं लगता, जिस रूम में बैठ करके वो अध्ययन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं गहराई से, उनके वास्ते से यदि बैंड बाजी और बारात निकल जाए तो उन्हें उनका ध्यान ही नहीं जाता कि कोई बारात निकली है। उपयोग इतना तल्लीन उस विषय में ऐसा हो जाता है। ऐसे ऐसे केस हमने देखे हैं हिंदुस्तान में, डॉक्टरों से सुनते हैं, आपने चर्चा सुनी होगी, ऑपरेशन कराया, पैर का ऑपरेशन कराया, एक गांठ का ऑपरेशन कराया और डॉक्टर से कह दिया कि बेहोश मत करना, मेरे को तो बस ये उपन्यास दे दो चलता रहेगा, आप कर दो ऑपरेशन। मेरे को तो ये सवाल है, इन सवालों को सॉल्व करने में उपयोग लग रहा है, अरे उपयोग उधर जाता है तो तकलीफ खड़ी होती है। आचार्य देव कह रहे हैं तू उस तरफ उपयोग ले जाता क्यों है ये बता। मेरे से कई लोग ये कहते हैं, कभी कभी इस तरह की बात कहते हैं, पंडित जी मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं जब जब उसके बारे में सोचता हूँ ना मेरा खून खोल जाता है। ऐसी बातें करते हैं ना लोग, मैं उस घटना को जब भी याद करता हूँ ना मुझे अंदर से ऐसे लगता है ये और ये कैसे होता है, इतना गुस्सा है, क्या करूं बताओ। तो हम ये कहते हैं कि सुनो तुम जब जब उसके बारे में विचार करते हो तो तुम्हें गुस्सा आता है ना अंदर से, हाँ तुम उसके बारे में विचार ही क्यों करते हो। तुम ये कह रहे हो कि मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, उस घटना के बारे में सोचता हूँ मेरा खून खौलता है, तो तू उस घटना के बारे में सोचना बंद कर देना। मुझे जब भी ये बात याद आती है, 3 साल पहले उन्होंने मेरे को जो कहे थे वचन, वो जब भी मुझे याद आते हैं मेरे फिल्म ला जाता हूँ। तो भैया तू याद क्यों करता है, किसने कही तेरे को वो बात याद करने की, तू गौर नहीं कर सकता है। आज भी मेरे कानों में वो शब्द गूंजते हैं जो उन्होंने 20 साल पहले मुझसे कहे थे, क्यों तू भूल नहीं सकता है उनको। जो चीज तुझे तकलीफ देने वाली है अभी तो तेरी जिम्मेदारी है ना कि तू उसको न देखे, ये जिम्मेदारी किसकी है। नहीं साहब उन्होंने मेरे को ऐसा कह दिया 3 दिन पहले, 3 दिन हो गए मेरे को नींद नहीं आई, 3 दिन पहले ऐसी बात कह दी उन्होंने, मेरी देवरानी ने ऐसी कह दी, मेरी पिताजी ने ऐसी बात कह दी, हमारे पिताजी ने ऐसी कह दी, वो आए थे हमारे यहाँ ऐसी बात सुना करके चले गए हमारे को, 3 दिन हो गए मेरे को चैन नहीं पड़ रही है। 3 दिन से याद है तुझे, और 3 दिन से जो समय सार सुना रहे हैं वो याद नहीं है, मैं ज्ञायक भाव हूँ ये तुझे याद नहीं रहता है, मैं अनादि अनंत हूँ ये तुझे याद नहीं रहता है, मैं पर्याय मात्र से पार ध्रुव ज्ञायक हूँ ये तुझे याद नहीं रहता है, तू कचरा ही इकट्ठा करता है अपने दिमाग में। नुकुल भाई क्या इकट्ठा करें बोलो, क्या इकट्ठा करने योग्य है, वो बात याद नहीं रहती है इसको, समय सार के ज्ञायक भाव की बात इसे याद नहीं रहती है, और इसे ये याद रहता है कि उसने मुझे गाली दी थी, कि तू अपने दिमाग में गालियां ही स्टोर कर, ठीक है तो अपने दिमाग में कषायों की बातें ही स्टोर कर। ये नहीं हो सकता है कि हम कषायों को देखना बंद कर दें, ये नहीं हो सकता है कि हम निंदा अपमान आलोचना की बातों को देखना बंद कर दें। अरे आज वो बातें करने योग्य नहीं है, आज तेरा सम्मान समारोह चल रहा है, आज उद्घाटन का प्रसंग है, आज तेरे गीत गाए जा रहे हैं, तो अपना पुराना पिछली जिंदगी में हुए दुखड़े को मत लो, आज तो आनंद का समय है। इस आनंद के काल में वो दुख की बातों को याद नहीं किया जाता है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, क्यों याद करता है। ये दिखा रहे हैं पर्याय देखने लायक नहीं है, कचाएं देखने लायक नहीं है, विकार देखने लायक नहीं है। शिवाब आप कह रहे हो ज्ञायक भाव है, शुद्ध है, द्रव्य स्वभाव से देखने पर ऐसा प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है, लेकिन पर्याय स्वभाव से देखने पर नरक निगोद में गया तो था ना, मैं नरक में गया था ना, मेरे डंडे पड़े थे ना, तिल तिल करे देह के खंड ऐसा हुआ था ना मेरे साथ में, भूख प्यास की वेदनाओं को सहा था ना मैंने, कि यार तेरे में बिल्कुल ही अकल नहीं है। आज तक कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी सेठ का सम्मान समारोह हो रहा हो, उसकी महिमा और गीत गाए जा रहे हो, और वो माइक पर खड़ा होकर के बात कहे कि जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझे पनिशमेंट मिला था। कौन कहता है ऐसी बात, थोड़ी भी समझदारी नहीं दिख रही है, थोड़ी भी समझदारी नहीं दिख रही है। आचार्य देव तुझे परमात्मा कहकर के पुकार रहे हैं, आचार्य देव तुझे भगवान कहकर के पुकार रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रही क्या सोच रहा है। बंदा तो हूँ साहब, राज देख रहे ही साहब, कुछ भी कहो साहब, आके कचाए गुस्सा तो होता ही है साहब, क्या होता है, नहीं है तुझमें कुछ भी। मुझे बता ये ज्ञायक भाव की चर्चा सुनते समय गुस्सा आ रहा है क्या? कि नहीं अभी तो नहीं आ रहा है, ये अभी नहीं आ रहा है तो पीछे वाली पर्याय तो गई, वो है कहाँ? श्राव भाव में चली गई, खत्म हो गई वो पर्याय, तो ये पर्याय टिकी हुई नहीं है, वो बैठी हुई नहीं है। जो चला गया उसको लेकर के अब रोने की जरूरत नहीं है। घर में सांप घुस गया था, कोबरा, जहरीला सांप था, 3 फीट लंबा, 4 फीट लंबा, वो इधर से उधर खूब घुमा और फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो चला गया। अब ये बात 1 महीने पुरानी है और आज याद करके रो रहा है। अरे वो महीने पर पहले आया था, अब नहीं है, कुछ नहीं है, तू उस बात को याद करके रो रहा है, सांप आ गया था। अब मतलब क्या है उसका? आया था, चला गया, खत्म हो गई ना बात। नहीं नहीं साहब, आपको पता है 3 साल पहले मेरे अटैक आ गया था, आज भी मैं उसको याद करता हूँ तो रोना आता है। तो तू मूर्त याद क्यों करता है? अब तो नहीं है ना, अब तो बीमारी निकल गई ना, अब तो जो तेरे गांठ में कैंसर था वो गांठ ही निकाल दी ना, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो तू शुद्ध है, अब क्यों बात याद कर रहा है वो पुरानी? दुनिया में कोई नहीं करता है ऐसी बातें याद, लेकिन पता नहीं क्यों जब स्वाध्याय करते समय जायक भाव, परम पारणामी भाव और कारण परमात्मा की चर्चा करते हैं हम, तो पता नहीं क्यों सामने से ये बात जरूर आती है कि पंडित जी रागी भी तो है ही ना, हाँ ये संसार तो है ही ना, आप कितना भी कहो मुक्त है, मुक्त है, त्रिकाल मुक्त है, कारण परमात्मा है, कितना भी कहो कारण परमात्मा है, लेकिन अभी कार्य में तो विकारी ही है ना, तो विकारी विकारी देख करके भिखारी बना रहे, ये भिखारीपन है तेरा, मिटा इस वृत्ति को, ये वृत्ति रखने योग्य नहीं है, ये चिंतन करने योग्य नहीं है, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या चिंतन करे, ये चिंतन करो यार यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, इसका उपाय क्या है? बोलो, कपड़े के ऊपर कोई गंदगी गिर गई क्या, तो क्या करे? बोलो, रोने बैठ जाए? महेंद्र भाई रोते रहे क्यों? गिर गया, अरे कुत्ता खराब हो गया, अरे खराब, अरे तू मूर्ख, अभी तो एक काम कर, ये गिरा था ना, जितना जल्दी संभव हो सके इसको धो, इसको निकाल और ये विचार कर कि ये साफ कैसे हो सकता है, उसमें दिमाग लगा, रोने में समय बर्बाद मत कर। मैं आपसे पूछता हूँ, सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए या दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और रोड पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ हो, हाथ पांव टूट रहे हो, लहू लुहान हो रहा हो, और कोई व्यक्ति ये कहे कि चलो उसको उठाओ हॉस्पिटल ले चलो, नहीं नहीं कोई नहीं ले जाएगा मेरे को, पहले ये बतलाओ उसको पकड़ा के नहीं? अरे तू मर जाएगा, तू ये विचार कर कि मुझे आगे स्टेप क्या लेना है, नहीं नहीं हुआ कैसे ये बतलाओ, गलती मेरी नहीं थी उसकी थी, या गलती मेरी थी तो पहले ये बतलाओ कि गलती किसकी थी? क्यों क्या किस बात में दिमाग लगा रहा है? हाथ पांव टूट गए हैं, खून बह रहा है, तकलीफ दिखाई दे रही है, तू इसको लेकर के बैठा है, तो इसका विचार नहीं नहीं मैं केस कर दूंगा उसके? अरे तू केस वेस तो बाद में करना, पहले बचने की तो सोच, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, रिपोर्ट करवा दूंगा। छोड़ ये बातें, इलाज करा अपना, ये सही कैसे हो सकता है, ये कुर्ता धुल कैसे सकता है, तो इसका विचार कर। किताब अनंतानुबंधी हो गई, मिथ्यात्व हो गया, इस मिथ्यात्व ने बहुत बुरा किया है मेरा, विचार मत कर ये मिथ्यात्व धुल कैसे सकता है, इसका विचार कर। ये कैंसर लंबे समय से हो गया था, ये कैंसर कैसे दूर हो सकता है, इसमें दिमाग लगा, एक समय मात्र भी ये हुआ कैसे था इसमें विचार करेगा, तो एक समय की दूरी हो जाएगी इसके ठीक होने में, इतना दूर हो जाएगा। जो जो डिले करते जा रहे हैं हम, देखिए पास्ट का विचार करने से होगा क्या, एक बात बताओ, हम कर रहे हैं पास्ट का विचार, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, भूल जाओ सब। मैं तो कहता हूँ लोगों को, मेरा एक सेमिनार था पारिवारिक समस्याओं का समाधान, एक टॉपिक पर बोलने के लिए मुझे जैन समाज की बहुत बड़ी संस्था ने बहुत बड़ा आयोजन करके बुलाया, बहुत सारी पीसियां थी, संघ था, बुलाया मेरे को एक सब्जेक्ट पर बोलने के लिए, बहुत बातें कही मैंने। मैंने कहा पारिवारिक समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान तो ये है कि परिवार की समस्याएं परिवार में ही निपटाओ, और दूसरी बात ये, उसको निपटाने का उपाय क्या है? आज तक जितनी भी बात पीछे हुई है वो बात रिपीट नहीं होगी। क्यों करें, क्या क्या बदलाव? जो बीमारी पहले हुई थी अब उस बीमारी की चर्चा क्यों करें? जो तकलीफ और जो संकट पहले हुआ था उसकी चर्चा क्यों करें? सुनो, ये विचार करता है, अरे राम मैं आपको क्या बताऊं महेंद्र भाई, 3 साल पहले की घटना है, एक बार चोर घुस गए थे हमारे यहाँ घर में, ऐसी हालत हुई, मैं तो भाई दिल दहल जाता है और ये उस बात को याद कर करके रो रहा है। 3 साल पहले चोर घुस गए थे, 3 साल पहले आए थे चोर, और ये रोता रहता है जब देखो तब उस बात को याद कर करके, चोर घुस रहे थे, चोर घुस रहे थे। फिर हमने उससे पूछा कि तो एक बात बताओ, ये चोर घुसे थे अंदर वो क्या चोरी करके ले गए? अरे ये चुराया कुछ भी नहीं, क्या आ गए थे वो, मैं जम गया तो भाग गए वो। तो अभी क्यों रो रहा है ये बता, तेरी संपदा में कुछ कमी हुई हो तब तो रोने की तो सार्थकता दिखाई देती है। अरे ये मिथ्यात्व घुस गया तेरे अंदर, अनंतानुबंधी घुस गया और कई बार इसने चक्कर लगाए, लेकिन तेरी अनंत गुण संपदा में कुछ कमी हो गई हो तो बता। तेरी संपदा में तो कुछ भी चुरा करके नहीं ले जा पाए, तेरी तकलीफ किस बात की हो रही है? तो किस बात को याद करके रो रहा है? कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, नरक में चला गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अरे तू खुद ही बोल रहा है इन शब्दों को देख, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मेरे नहीं, मैं शरीर नहीं, खुद ही तो बोल रहा है शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, खाने पीने और भूख क्या, तो तू रोटी खाता है क्या? तू शरीर रूप है क्या? चिल चिल करे देह के खंड, तू शरीर है क्या? प्रेमर सरुदन जुत अति पत्र, अति जो देह विदारे सत्र, लेकिन फिर भी आत्मा जो का क्यों अखंड रहा? चिल चिल करे देह के खंड, फिर भी रहा मैं अभेद अखंड। क्या अभेद अखंड क्यों नहीं याद आ रहा है? खंड खंड क्यों याद आ रहा है? वो क्यों याद आ रहा है? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा होने पर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। 3 मंजिल से गिर गया ऊपर छत पर, छत पे कुछ काम कर रहा था और ध्यान नहीं रहा, पीछे होते होते एकदम 3 मंजिल से गिर गया। अब 3 मंजिल से गिर गया और खरोंच भी नहीं आई इसके, अब उस बात को याद कर करके रोता है। अरे तेरे तो खरोंच भी नहीं आई, तू रोता क्यों है? तो गिर तो गया था ना, अरे लेकिन तेरा बिगड़ा क्या ये तो बता, बिगड़ा तो कुछ नहीं, तो फिर रोने का क्या काम है बता? मेरे असंख्यात प्रदेशों में से क्या कमी हो गई बोलो महेंद्र भाई? कुछ कम नहीं हुआ, किताब अनादि काल से संसार में क्या थी, नित्यात्व था, ये था, वो था, अनंत दुख था, अरे लेकिन तेरे में कमी क्या आई ये बता, तेरा बिगड़ा क्या? किताब दर्शन मोह का उदय था साहब अनादि काल से, तो ये बता दर्शन मोह के उदय ने तेरा बिगाड़ा क्या? ये बिगाड़ा तो कुछ नहीं, तो फिर रोता क्यों है? जब तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा तो तू रोता क्यों है? असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश कम नहीं हुआ, अनंत गुणों में से एक गुण कम नहीं हुआ, अनंत शक्तियों में से एक शक्ति में कमी नहीं आई। नरक में रहा हो चाहे निगोल में रहा हो, पिछले अनंत काल में कर्मों ने मेरा बिगाड़ने की बहुत सोची, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली पावरफुल तत्व हूँ कि कर्म मेरा धर्म के मात्र बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सके। तो अपनी पावर का विचार क्यों नहीं करता है? तुझे इस बात की प्रसन्नता क्यों नहीं होती है? किसी व्यक्ति को किसी ने कुछ कपड़े भेज दिए, वस्त्र भेज दिए, उन वस्त्रों को उसने पहना, मार्केट में गया और वहां गोलियां चल रही थी, गोलियां चल रही थी, एक गोली इसके भी लगी, फिर एक गोली इसके भी लगी, तो गोली क्या लगी, वो जो वस्त्र पहने थे ना वो वज्र के थे। क्या इसे पता नहीं था? अब ये रोए जा रहा है, ये रोए जा रहा है। अरे मूर्ख तू देख तो सही, गोली तेरे लगी नहीं है, ऐसा कवच तूने पहन रखा है, मिथ्यात्म की गोलियां चली और वहां मैं अनादि अनंत का कवच पहन करके बैठा था। बोलो, मिथ्यात्म की गोलियां चल रही थी, अनंतानुबंधी की गोलियां चल रही थी, ये कर्म निरंतर मिथ्यात्म और अनंतानुबंधी की गोलियां दागे जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अनादि अनंत ज्ञायक भाव का कवच पहने हुए बैठा था। सच्चाई यह है कि ये गोली मेरे लगी ही नहीं। और मैं ये मानकर मुझ में निश्चात घुस गया, मुझ में अनंतानुबंधी घुस गई, मैं रोए जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ये? ये गायक भाव बतला करके कहना चाह रहे हैं भैया, तेरे गायक भाव में प्रवेश नहीं होता। ये सत्य पक्ष है, तेरे इस गायक भाव में प्रवेश नहीं होता, विकार की एंट्री ही नहीं है यार। तू क्या चिंता कर रहा है? ये ऊपर ऊपर लौटता है सारा विकार, पानी के ऊपर तेल तैरता है ना जैसे, वो तेल पानी के भीतर प्रवेश नहीं करता है, ऊपर ऊपर है, बार बार लौटते हैं ये सब मैदान में, बाहर आंगन में, तो अंदर बैठा हुआ है। ये फायर प्रूफ मकान में बैठा हुआ है और बाहर आग लगी हुई हो तो तुझे काहे की टेंशन है? नहीं जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। अरे तू फायर प्रूफ में बैठा है, तू कहाँ जल जाएगा? आपके मकान यहाँ हेरिकेन प्रूफ है ना ये? तो कितना भी हेरिकेन आए और आप यहाँ बैठे हो तो डर लगता है? हेरिकेन तो देखते हैं आप विंडो में से, है झाड़ उड़ते हुए, टूटते हुए गाड़ियाँ इधर से उधर चली जाए, कैसे कैसे तूफान आता है खतरनाक। आपको भी तकलीफ नहीं होती है? घबराहट नहीं होती आपको? ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जिस में बैठे हैं वो हेरिकेन प्रूफ है। अरे अब ये हम कह रहे हैं तेरा गायक भाव ऐसा प्रूफ है जिसमें बाहर में कितने भी मिथ्यावादी के आंधी तूफान आए, राग द्वेष कजायों के कर्मों के आंधी तूफान आए, तेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। बोल अब, लेकिन समझ क्या ये है ना, देखता बाहर है क्या, वो कुछ ही नहीं रहा है और ये देख देख के परेशान हो रहा है, ये देख देख करके दुखी हो रहा है, हो नहीं रहा है, ये क्यों नहीं देख रहा है? ये बड़ा गजब का तत्व है भाई, क्या करें? ये जो सारी तकलीफ है ये सब ना समझी की तकलीफ है। जिसने समझ लिया हो उसे तकलीफ नहीं होती, जिसने नहीं समझा वो दुखी हुए होता रहता है। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ओहो इस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख पाया है, अनंत दुख पाया है हमने। दो व्यक्तियों को हमने वो कवच दिया था महेंद्र भाई पहनने के लिए, और मार्केट में गए, मार्केट में जाने पर जब गोलियां चल रही थी, एक को तो उस कवच का भाव वासन था, तो गोलियां चल रही थी तो ऐसे मजे से ओए चला मेरी तरफ चला, ऐसे मजे कर रहा था, और जो दूसरा था वो रो रहा था गोलियां चलने पर, जब उसकी तरफ गोलियां चल रही थी, तो बताओ क्या कारण है? कारण साफ है, जिसने ये समझ लिया कि गोलियां मुझे लग नहीं सकती है वो मस्त है, और जिसने ये समझा कि मेरे लग रही है वो दुखी है, और सच्चाई ये है कि दोनों के नहीं लग रही
है।
सच्चाई तो ये है ना कि दोनों के नहीं लग रही है, माना क्या ये बतलाओ? जिसने ये माना कि मेरे गोलियां लग रही है वो मर गया कि नहीं? भुगन भाई मर गया? मरा नहीं, लेकिन बिना मरे ही मर जाऊंगा इससे दुखी है। और जिसने इस सत्य को समझ लिया उसको कोई दुखी कर नहीं सकता है। ये गायक भाव का आनंद है भाई साहब, ये आनंद उठाओ, कुछ हो नहीं सकता है। तुम रो मत, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई तुम्हारा, परद्रव्य की रंच मात्र सामर्थ्य नहीं जो तेरा कुछ भी बिगाड़ सके, किसी भी परद्रव्य ने, अनादि काल से आज तक किसी परद्रव्य ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस बात का भरोसा हो, इस बात का श्रद्धान हो, इस बात का विश्वास हो, अपूर्व बात है भाई साहब। ये जो गायक भाव की चर्चा कर रहे हैं, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये विश्वास दिलाते हैं कि भैया बात वो करेंगे जिससे तेरा अनादि काल से चला आ रहा दुख वो मिट जाए। ये दुख था ही नहीं, ये तो भ्रांति थी, ये धोखा था, ये गलत फहमी ने था कि साहब हमें तो दिखता नहीं है ऐसा। आप कहाँ देख कर? बोले तुम्हें दिखता नहीं है, तुम गलत जगह से देख रहे हो, हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तुम उधर से देखो, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखो। क्या बातें कही है, विचार करो खूब खूब विचार करो, और कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है इस बात के आनंद का उपभोग करो। बोलो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो वापस पढ़ता हूँ, समय सीमित अपने पास में, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कितना सुंदर वाक्य पढ़ा, बहुत बड़ा वाक्य था, कल चर्चा करेंगे अभी और इस वाक्य के संबंध में, कल अपना अंतिम है यहाँ है ना, कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, बाकी जो टीका बच जाएगी महेंद्र भाई याद दिलाना, अगले वर्ष बाकी बची हुई टीका को शुरू करेंगे। खत्म तो होता ही नहीं है कभी, मैंने कल कहा था, गाथा तो पूरी होती ही नहीं है। छठी गाथा कब पूरी हो जाएगी बताओ? ग्यायक तो ग्यायक ही है, उसमें समा जाओ तो पूर्णता है, सिद्धत्व की प्राप्ति पे पूर्णता है, सिद्धात्मा की अनुभूति पर पूर्णता है। कब पूरा होगा, कितनी देर में पूरा होगा? जब करने योग्य काम कर लिया तो पूरा हो गया, और करने योग्य काम जब तक नहीं हुआ तब तक आएगा पूरा? पढ़ करके पूरा कर लिया उससे कुछ नहीं होता है। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मान कचाए मिटी नहीं मन की झिझाली प्रतिमाएं। इतना प्रचार किया भगवान पर, इतने कलश पानी के डाले कि प्रतिमाएं घिस गई, इतनी मालाओं के जाप किए कि मालाएं तोड़ दी, और इतने शास्त्रों का अध्ययन किया हमने कि शास्त्र फाड़ दिए पढ़ पढ़ करके। मान कर चाहे घिसी क्या मन की? वो तो नहीं घिसी। यदि वो नहीं घिसी तो तुझे मोक्ष नहीं है, और यदि वो घिस जाए तो कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो यही मोक्ष है। देखो क्या कह रहे हैं भाई, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, इससे देखो कैसे देखे, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, जितनी विचित्रता दिखाई देती है ये कषाय चक्र के उदय की विविधता के वश से प्रवर्तमान कौन पुण्य और पाप से को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले जितने शुभाशुभ भाव हैं उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वे प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। उस रूप परिणमित नहीं होता, कल करेंगे चर्चा इसकी। तो उस रूप परिणमित नहीं होता का मतलब क्या है कि विभाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए शुद्ध है, ये प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ये क्यों नहीं है आखिर प्रमत्त अप्रमत्त? हमें तो दिख रहा है प्रमत्त दिख रहा है अप्रमत्त दिख रहा है, ये प्रमत्त अप्रमत्त क्यों नहीं है? वही एक और फिर शुद्ध क्यों है? अन्य समस्त द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, समस्त प्रभावों से भिन्न होने से ये शुद्ध है। ये गायक की कैसी शुद्धता है? अरे गायक की शुद्धता नहीं, मेरी शुद्धता है। अपने आप की शुद्धता का अनुभव करो, अपनी अनादि अनंतता का अनुभव करो, अपने परम पारमार्थिक कारण परमात्मा का अनुभव करो, इस ध्रुव स्वभाव का अनुभव करो। भाई इस गायक का गायक रूप से अनुभव करोगे और ये गायक यदि अनुभूति का विषय बनेगा तो निश्चित रूप से अपार अनुभव आनंद की प्राप्ति होगी। जैसा आनंद आएगा महेंद्र भाई, जैसा सिद्ध भगवान अनुभव करते हैं। और हम सभी इस ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य से उसी शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करें, इसी भावना से बात को यही विराम देते
हैं।